क्या था? फरिश्ता। और फरिश्ते स्वरूप से क्या दिलाना है सबको? फरिश्ते स्वरूप से एक बहुत अच्छा वर्षा दिलाना है सबको, क्योंकि संसार में दोनों बड़े धर्म क्रिश्चियन और मुस्लिम किनको मानते हैं? फरिश्तों को। हमारे फरिश्ते स्वरूप से ही उनको हम बाबा से जोड़ेंगे और अंत में सभी सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, बाबा मेरा है, मेरा बाबा कहेंगे। मेरा कहते ही उन्हें मुक्ति का वर्षा मिलेगा, अधिकार मिल जाएगा। बाप बना लिया तो बाप की दोनों संपत्ति है ना, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी, तो उन्हें मुक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो हमें अपने फरिश्ते स्वरूप को अब जरा प्राप्त करना है, बढ़ाना है। कुछ धारणाएं ले लें उसके लिए। फरिश्ते के लिए सबसे पहली चीज जो बाबा कहते हैं, डबल लाइट। डबल लाइट का डबल अर्थ, मैं आत्मा ज्योति लाइट, मन भी लाइट हो, बहुत बड़ी एक चीज है। मन को लाइट कर देना, मन पे बोझ बहुत है, प्रेशर है, मन में चिंताएं हैं, हर चीज का इफेक्ट मन पे आता है, मन को लाइट कर लेना, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा अर्थ है आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का, दोनों प्रकाश में ट्रांसपेरेंट बॉडी, ये फरिश्ता स्वरूप है। हमने उस दिन थोड़े में चर्चा की थी, ये हमारा सूक्ष्म शरीर फरिश्ता शरीर कैसे बनता है, आत्मा के संकल्पों की एनर्जी निरंतर देह में फैलती रहती है और एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता रहता है। तो जब से आत्मा इस धरा पर आई है, उत्तरी परमधाम से सूक्ष्म शरीर नहीं लाई और देह में प्रवेश करते ही संकल्प उठे और सूक्ष्म शरीर का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो हम सबके पास पूरे ही 5000 साल सूक्ष्म शरीर रहा। जैसे स्थूल शरीर बदलते रहे, सूक्ष्म शरीर तो वही रहा लेकिन उसमें चेंजेज होती रही। हमारी स्थिति के आधार से, हमारी प्योरिटी के आधार से, हमारी शक्तियों के आधार से, और फिर धीरे धीरे निगेटिविटी जो आई, विकर्म विकार उनके इफेक्ट से, तो अब संसार में सभी के सूक्ष्म शरीर कैसे हो गए होंगे? लगभग काले, लगभग काले। और जब हम फरिश्ते बनेंगे तो ये सूक्ष्म शरीर पूरी तरह हो जाएगा सफेद, व्हाइट। ब्रह्मा बाबा की भी अंत में 68 में ये बहुत अच्छी स्थिति कईयों को तो दिखाई देती थी और रियलाइजेशन तो बहुतों को होता था कि बाबा जैसे धरती से ऊपर हैं, उनका शरीर भी बिल्कुल जैसे रुई का हो गया, कॉटन का, बिल्कुल लाइट। क्योंकि योग अभ्यास करते करते देह की स्थूलता भी समाप्त होने लगती है। देहभान तो समाप्त होता ही है, लेकिन उसमें जो स्थूलता है वो भी समाप्त होने लगती है, क्योंकि वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, सूक्ष्म शरीर को साथ ले जाती है। इसलिए फिलोसफी में, मुझे वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में इसका पता नहीं, इंडियन फिलोसफी में ये मान लिया गया कि मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, कर्म भी आत्मा नहीं करती, सूक्ष्म शरीर करता है। आत्मा केवल है शरीर में, साक्षी है, वो एनर्जी के रूप में इसमें रहती है। जैसे बिजली है, बिजली चारों ओर फैली है, हमारे घर में फैली है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अनुसार वो यूज होती है, ऐसा फिलोसफी में मान लिया गया। तो ऐसा सोच लिया कि जब शरीर छोड़कर आत्मा दूसरे गर्भ में जाती है तो इस सूक्ष्म शरीर में वो सब कुछ होता है जो हमने पूरा जीवन किया है, संस्कार, कर्म, वो दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो क्यों ये सब माना गया? क्योंकि कुछ चीजें तो मिस हुई ना ज्ञान में, लेकिन हमें ये जानना चाहिए जो कुछ आत्मा में है, ध्यान से सुन लेंगे, वो सब सूक्ष्म शरीर में भी है और वो सब स्थूल शरीर में भी है, उसके प्रिंट्स, हर एक के चेहरे अलग अलग। बाबा ने आत्मा के बारे में ये गुह्य बात सुनाई है ना, हर एक का फीचर्स, चेहरे हर जन्म में अलग, और इस जन्म में भी बदलते रहते हैं अगर सूक्ष्मता से जांचा जाए, क्योंकि आत्मा के अनुसार ही शरीर का निर्माण होता है। इसी आधार पर एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष। तो मस्तक को देखकर, कान, मुख, नाक, आंख, सबको देखकर, नेल्स को देखकर वो सारी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि वो सब जो कुछ आत्मा में है वो देह में भी रहता है। अब हमें ज्ञान मिल गया कि मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म सब पहले आत्मा में है, उसका फिर उसके वाइब्रेशन सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में उसके प्रिंट्स, उसके चिन्ह रहते हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म गति है कि गर्भ में शरीर का निर्माण आत्मा के यानी सूक्ष्म शरीर के आधार से होता है। तो हमें फरिश्ता बनना है, डबल लाइट होना है, अपने मन को बिल्कुल हल्का करना है, ऐसा जीवन बनाना है। लक्ष्य बनाएंगे सभी, ऐसा जीवन बनाना है कि हमें लगे मन पर कोई बोझ और कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल लाइट है, मुक्त हो गई है आत्मा। ये आत्मा की मुक्त अवस्था हमें यही अचीव करनी है, बाबा ने ये बात कही है। मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव नहीं होता, और जीवन मुक्ति में जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक सा है ना सब कुछ। हम सारा इस समय डीप साइलेंस में मुक्ति धाम में रहें तो हमें शांति है या नहीं है ये पता थोड़ा ही रहेगा, सदा ही है ना। स्वर्ग में भी संपूर्ण सुख है, जब कंपैरिजन होता है तब पता चलता है, योग लगाते हैं बड़ा सुख मिलता है, जो कि दुख था तो पता चलता है बहुत सुख मिल रहा है। और किसी का योग बहुत अच्छा हो बहुत ज्यादा तो क्या होगा, यही फीलिंग होगी, सुख इतना मिलेगा कि इस आभास से भी हम परे हो जाएंगे कि हम बहुत सुखी हैं, आनंद की स्थिति रहने लगेगी। तो हमें अपने मन को पूरी तरह से हल्का करना है। मैं पहले दो चार बातें फरिश्ते की बता दूं। बहुत साल पहले मुझे किसी ने लिख कर भेजा कि बाइबल में फरिश्ते की ये 100 पॉइंट्स लिखी हैं, 100 थी, दो चार नहीं, 100। बहुत अच्छी थी वो, फरिश्ते संपूर्ण पवित्र होते हैं, यही लैंग्वेज थी। फरिश्ते गॉड्स मैसेंजर होते हैं, फरिश्ते बहुत पावरफुल होते हैं, वे निर्भय होते हैं, वे सरल चित्त होते हैं, वे सबकी सुरक्षा करते हैं, वे सबको मदद करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, तब मैंने इस पर एक लेख भी लिखा था बहुत अच्छा, उसमें से 10 बातें चुन ली थी मैं, जिन 10 में सब आ जाती हैं बाकी। तो फरिश्ता बनना है तो संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण संतुष्टता। और एक बहुत सुंदर धारणा जिस पर बाबा बहुत ध्यान दिलाते हैं, मैंपन से पूरी तरह मुक्त, बहुत हमारी अच्छी धारणा है ये। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आते हुए अगर किसी के अंदर ईगो भी रहता है तो समझ लें मंजिल अभी दूर है। स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकल स्वरूप है बहुत पोलाइट हो जाए, हम्बिल आईनेस, ये खत्म होती चले। फरिश्ते संपूर्ण संतुष्ट, सबको पता है बाबा की मूल्यां संतुष्टता पर बहुत चली हैं। एक गहरा और बड़ा सब्जेक्ट है कि हम संतुष्ट आत्मा हो जाएं। और पहले ध्यान देना है ईश्वरीय खजानों से, ईश्वरीय प्राप्तियों से ही कोई आत्मा संतुष्ट हो सकती है। और जब हम स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम सीख पाते हैं दूसरों को संतुष्ट करना। जब तक हम स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, तो हम दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हम खुद टेंशन में, इरिटेशन में हैं, कोई हमसे बात करने आएगा तो क्या करेंगे, उसको भी टेंशन में ला देंगे फट से। इसलिए हम संतुष्ट तो संतुष्ट करने की कला आ जाएगी। और जिनको राजा बनना है उन्हें सबको संतुष्ट करने की कला आनी ही चाहिए। राजा प्रजापालक होता है, राजा प्रजा का मात पिता होता है। सतयुग में जो राजा रानी होंगे उनसे सब आराम से मिलेंगे, जैसे वो हमारे परिवार के बड़े हैं। मुझे दादी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी, हम लोगों से मिलती थी ना दादी, जैसे फैमिली मीटिंग होती है यहाँ, तो हमारी मधुबन वालों से भी दादी जल्दी जल्दी मिलती थी। हमेशा पूछती थी, दादी से सब संतुष्ट हो, कोई असंतुष्ट हो तो बताओ यहीं, मतलब बहुत ओपनली यहीं बताओ, अभी संतुष्ट करेंगे सबको। और मैं देखता था दादी में ये संस्कार, बाबा में तो था ही बहुत ज्यादा, सब खुश रहे। वो कहती थी मैं चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी जो, मुझे ये ख्याल ही नहीं रहता, मैं चीफ इस परिवार की हूँ बड़ी, सब सबको मुझे खुश रखना है, सबको संतुष्ट रखना है, तो राजा को अपनी प्रजा की पालना करके उसे खुश और संतुष्ट रखना ही चाहिए। जो सबको संतुष्ट और खुश नहीं रख सकते वो राजा, आगे आप बोल दो, नहीं बन सकते। ठीक है, आपके मुख में नहीं, यहाँ गुलाब जामुन नहीं, वो अच्छी बातों के लिए कहा जाता है। तो हमें राजा रानी बनना है, संतुष्ट करना है स्वयं को। और मैं अपने को ऐसा सिखाता आया इस जीवन में, भगवान को पाकर भी यदि कोई संतुष्ट न हुआ तो कब होगा? यदि हम भगवान की संपत्ति से दूसरों को संतुष्ट न कर पाए तो कब करेंगे? मैं एक छोटी सी चीज, शुरू में जब यज्ञ बहुत छोटा था, मैं कहूँ कुंवर था, बेगरी पार्ट से बाहर आया था, एक भाई उसके पास आया जिसके पास बिजली का सामान रहता था। मेरा बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया, भाई एक बल्ब दे दो। बल्ब की कीमत थी उस टाइम बहुत कम, एक रुपए से भी कम। उसने उसको डांट दिया, कुछ दिन पहले ही बल्ब ले गए थे, क्यों तोड़ा, नहीं मिलेगा, जाओ। मैं वहीं था, वो मेरा फ्रेंड था जो बिजली का काम संभालता था, वो चला गया। मैंने उसको कहा, मेरे मुख से निकला और ये बात मेरे लिए वरदान बन गई, मेरी ही बात। मैंने कहा, भाई अगर तुम भगवान के माल से भी दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाते तो जब तुम्हारा होगा तो तुम तो शायद पानी का गिलास भी किसी को ना दोगे। ये बात उसको भी लग गई और मेरे को बहुत लगी। हम किचन में थे, किचन में सबको संतुष्ट करने का ज्यादा जरा काम होता है, तो हमने सीख लिया कि ये भोलेनाथ का भंडारा है ना, भरपूर। और जितनी ये देवकुल की महातात्माएं संतुष्ट होंगी, ये भंडारा भरपूर होता जाएगा। मैंने ये संगठन में सीखा कि हमें सबसे पहले संतुष्ट करना चाहिए अपने परिवार की महानात्माओं को, उनके गुड वाइब्रेशंस, उनकी दुआएं यज्ञ को भरपूर करेंगी। गीता में बहुत अच्छे महावाक्य हैं, लोग उसका मीनिंग बिल्कुल नहीं जान सकते। तीसरे अध्याय में प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर ब्राह्मणों को कहा, बहुत सुंदर शब्द है, हे वत्सो, इस यज्ञ से तुम देवताओं को प्रसन्न करो तो देवता तुम्हें मन इच्छित भोग प्रदान करेंगे। बहुत ही सुंदर बात है, बाबा ने यज्ञ रचकर हमारे हाथों में दे दिया है, इसे सफल करो और इससे सभी देवकुल की आत्माओं को संतुष्ट करो तो ये यज्ञ भरपूर रहेगा। हम एक लक्ष्य बना लें और कुछ नहीं, तो कम से कम मुख से क्या ऐसे सुंदर बोल तो बोले जो दूसरे प्रसन्न हो जाएं। हमने बाबा से पूछा था कभी, अव्यक्त बाबा से, जब बाबा मुझे पूछते ही रहते थे तुमसे सब संतुष्ट हैं, तो मैंने पूछा कि कुछ आत्माएं संतुष्ट नहीं होती, तो एक उत्तर ये दिया बाबा ने कि अपनी ओर से सबको संतुष्ट करो, चेक करो, तुम्हारे किसी बोल के कारण तो दूसरे असंतुष्ट नहीं हुए। तो बहुत अच्छी बात हम मधुबन निवासियों को सिखाई थी, अगर तुम्हें कहीं ना भी करना पड़ता है तो तुम्हारी ना करने में भी हाँ समाई हो। कैसे? मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, भाई मुझे ये चीज चाहिए और वो चीज महंगी है या हम नहीं दे सकते, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसा व्यवहार करें कि उसे लगे ये कोऑपरेटिव हैं, लेकिन कुछ कारणों से दे नहीं पा रहे हैं, तो अच्छी भाषा का प्रयोग, ये नहीं नहीं मिलेगी, जाओ, तुम बार बार आ जाते हो, तुम्हारा काम ही ये है। कभी कभी मनुष्य ऐसे भी हैं कि चीज भी दे देते हैं और डांट भी दे देते हैं, डबल काम। तो लेने वाला चीज लेके खुश भी नहीं होता बेचारा, उदास चेहरे से वापस चला जाता है। तो बाबा ने सिखाया, दो या न दो कम से कम मीठी वाणी तो दो। जगदीश भाई लिखा करते थे, गुड न दो, गुड जैसा बोलो तो सही। तो हम सभी फरिश्ते बनने वाले संतुष्ट आत्मा नम्र चित्त फरिश्ते अर्थात वो उसी में था बाइबिल की पॉइंट्स में, जिसका मन सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाओं से भरा हो, कोई शत्रु नहीं उनका, सब उनके मित्र होते हैं। हम सबके मित्र हो जाएं और सबको अपने मित्र बना लें। संगठनों में क्या होता है, कई लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि वे शत्रु ज्यादा बनाते हैं मित्र नहीं। हमें ऐसा व्यवहार करना है कि शत्रुओं की संख्या घटती चले, मित्रों की संख्या बढ़ती चले। शत्रु शब्द भारी है, संगठनों में वो यूज नहीं होता, समझ ही गए आप। ऐसी आत्माएं जो हमें भी बहुत प्यार करती हों, जो हमें एक बहुत अच्छी नजर से देखती हों, ये हमारे हैं, ऐसी गुड फीलिंग में रहती हों, परिवारों में भी सबको अपने गुड फ्रेंड बना देना चाहिए। तो फरिश्तों की ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। फरिश्ते बहुत शक्तिशाली और निर्भय होते हैं, फरिश्ते सबकी सुरक्षा करते हैं। ये फीलिंग विनाश काल में सबको बहुत होगी हम सब आत्माओं के द्वारा फील होने लगेगा। उन्हें कष्ट आया और वो अपने फरिश्तों को याद करेंगे और हम उन्हें दिखाई देंगे आसपास हैं उनके, और वो निर्भय हो जाएंगे। तो हमारा फरिश्ता स्वरूप इसके द्वारा बहुत बड़े काम आने वाले समय में संसार में होने जा रहे हैं, इसलिए सभी लक्ष्य बनाएं। हमें इस स्थिति की ओर बढ़ना है, रोज रोज कर ले तो बहुत अच्छा, एक हफ्ते में एक बार करें तो भी बहुत अच्छा। क्या अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को अपने सामने जरा क्रिएट करें। अब से 5 साल में, अब से 10 साल में जब हम संपूर्ण फरिश्ते बनेंगे तो हम ऐसे होंगे। एक सुंदर चित्र बना दो अपने, विजन जिसको कहते हैं, ऐसे होंगे हम। हमारे अंग अंग से प्रकाश फैलता होगा, मस्तक में मणि चमकती होगी, हम बहुत लाइट होंगे, हम संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को सुख प्रदान करेंगे, हमारी उपस्थिति उन्हें निर्भयता का अनुभव कराएगी, हम जहाँ होंगे वहाँ सभी के टेंशन समाप्त हो जाएंगे। एक विजन बनाए सामने, ये हमारा असली स्वरूप है। और फिर अभ्यास किया करें, हमारा ये फरिश्ता स्वरूप अब हमारी ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे धीरे, और आकर मुझ में समा गया। ये है अपने फरिश्ते स्वरूप का आह्वान करना। एक बार भी कर लेंगे ना हफ्ते में, बहुत गुड फीलिंग होगी, डिवाइन फीलिंग। पसंद है? तो हम अब सभी अपने को डबल लाइट करें। क्या करेंगे इसके लिए? ज्ञान की बातों को यूज करते हुए और विशेष रूप से समर्पण भाव मोस्ट इम्पोर्टेंट धारणा है। हम अपने समर्पण भाव को बढ़ाते चलें। भक्ति में तो हिंदू धर्म में खास, मैंने मुस्लिम धर्म में भी देखा थोड़ा बहुत, क्रिश्चियन धर्म में भी है, और जितने भी छोटे धर्म है सब में है ये समर्पण भाव। बिल्कुल बो डाउन कर देते हैं, सब कुछ तेरा है, तुम ही मालिक हो, मेरा कुछ नहीं है। भारत के मंदिरों में तो माताओं का ये मुख्य गीत होता है, तन मन धन सब तेरा, आरती गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं माताओं को बहुत हंसाता हूँ मंदिर में जाके ये, और घर वापिस आते ही तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे पास क्या लागे तेरा, उल्टा कर देते हैं। हमें इसको सीधा ही रखना है, सब कुछ तेरा। और बाबा की ये बहुत सूक्ष्म बात याद रखनी है, नोट कर ले मन में भी, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो सेकंड में संपूर्णता आ जाती है। संपूर्ण समर्पणता संपूर्णता को नजदीक लाती है। समर्पण मेरा मेरा बहुत है ना मनुष्य के पास, इसके निगेटिव पहलू भी हैं, मेरी कमजोरी, मेरी ये गलती, ये भी मनुष्य को भारी करती है ना, इनको भी अर्पित कर देना चाहिए। मेरे सारे बोझ, मेरी जिम्मेदारी, साकार की मुरलियों में मैंने साकार के समय ये एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, क्योंकि मेरे ऊपर भी किचन की जिम्मेदारी बढ़ने लगी, छोटे थे ना, थोड़ा भारीपन होता था, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई, बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, और जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी बाप को समर्पित करके जिम्मेदारी निभाते हैं, बाप उनकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर बात थी, सीक्रेट है। तो बहुत अच्छे अभ्यास मैंने इस पे किए, हल्के रहने के, सब कुछ तेरा। बातें तो सेवाओं में भी और जीवन में भी बहुत कुछ आती रहती हैं सबके सामने, लेकिन अपने को समर्पित भाव में रखते हुए, सब कुछ तेरा करते हुए, और इस नशे को साथ रखते हुए, कौन मुझे साथ दे रहा है। आपको भी ये बात बहुत अच्छी लगती होगी, याद कराएं अपने को, कौन मुझे साथ दे रहा है। समर्पण भाव और ये नशा, इससे हल्के हो जाएं। हल्का करना बहुत जरूरी है, बच्चों की ओर से भी हल्के हो जाएं, सभी संबंधियों की ओर से भी हल्के हो जाएं। बहुत नेचुरल सा स्वरूप है कि किसी माँ के बच्चे, एक बच्चा कुछ कष्ट पा रहा हो तो माँ से सहन नहीं होता। क्या अभ्यास करना चाहिए, जो अपनी सहन शक्ति बढ़ जाए, साक्षी भाव भी आ जाए और बच्चों को भी मदद मिल जाए। मैं पहले भी ये बात कही है और ये बात बहुत अच्छी तरह धारण करने की है कि यदि आप अपने बच्चों के लिए चिंताएं करते हैं तो आपसे निगेटिव वाइब्रेशंस उन्हें जाते हैं। माँ से बच्चे बहुत गहराई से जुड़े होते हैं, तो ये याद रखते हुए कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये एक आत्मा है और इसके साथ इसका अपना कर्मिक अकाउंट है, उसमें तो माँ कुछ नहीं कर सकती ना, वो तो हरेक का अपना अपना है, इसको वो स्वयं सेटल करना है। हाँ, हमारा उससे प्यार है तो हम उसे योग के वाइब्रेशंस देकर कर्मों को सेटल करने में मदद करेंगे। ये सच्चा प्यार है, ये हमें निश्चिंत भी रखेगा और बहुत पावरफुल साक्षी भी बनाएगा। कई माताएं ऐसा कर रही हैं, मुझे उनको देखकर बहुत आनंद आता है। बच्चों को कुछ भी होता है वाइब्रेशंस देती हैं, चिंताएं नहीं। अब कर्मों का खाता इनका अपना है, कोई कर भी क्या सकता है, वाइब्रेशंस देने की बहुत जरूरत होती है। कहीं कहीं ऐसे केस सामने आते हैं कि उनको सुन के ही दिल दहल जाता है। एक सुना दूं, खतरनाक बात है ऐसे। तो एक माता ने अमेरिका से फोन किया मुझे, उसके घर में पोतरे ने जन्म लिया है, ग्रैंडसन। कहा 6 मास का हो गया है वो, जब से जन्म लिया है तब से लगातार रो रहा है, और कहा दिनों दिन घर के वाइब्रेशंस डरावने होते जा रहे हैं। उसकी माँ तो बिल्कुल, कैसी स्थिति उसकी हो गई है, मैं क्या करूं, समझ सकते हैं ना। मैंने उसे बताया भाई कोई आत्मा बहुत बड़ा है कर्मों का, बुरे कर्मों का हिसाब साथ लेकर आपके घर में आ गई है, आपसे भी उसका कुछ नाता तो है कर्मों का, सबने मिलजुल के पाप किए ना, अकेले नहीं किए हैं, तो वो लेने आ गई है। इसलिए कहा वाइब्रेशंस भारी होते जा रहे हैं, उसने शब्द बोला डरावने होते जा रहे हैं, वो बहुत रोता है, अब भय लगने लगा है। क्यों होता है, उस आत्मा ने पूर्व जन्मों में बहुतों को भयभीत किया है। बस एक छोटी सी कहानी सुना दूं, हमारे यहाँ भारत में एक बहुत प्रसिद्ध डाकू थे अपने समय में, पंचम सिंह, ज्ञान में आए, ब्रह्मा कुमार बने। पहले पहले जब मधुबन में आए तो हम उस तरफ के ही हैं, नेटिव प्लेस उधर है, तो हमसे गहरी दोस्ती हो गई। हम उसे घुमाने ले गए एक जगह आबू में, ट्रेवर टैंक है, एक छोटा सा तालाब है जंगल में, जहाँ चीते भालू पानी पीने आते हैं। वहाँ राजा लोग शेर का शिकार किया करते थे, वहाँ शेर बहुत हैं उस जंगल में। तो वहाँ हम लोग जाकर बैठे, उसने प्रश्न किया, वो ऐसा भयानक डाकू था, 200 मर्डर के तो केस थे उस पर, होंगे तो 2000, और 200 का तो बाकायदे कोर्ट में केस फाइल किया गया था, प्रसिद्ध था। कहा बस नाम सुनते थे ना कि पंचम सिंह आ रहा है, पुलिस भी भाग जाती थी, पुलिस भी। तो क्या पूछा उसने मेरे से, कहा मेरे साथ एक समस्या हो रही है आजकल, रात को 12 बजे मुझे इतना डर लगता है, शरीर कांपता है, मुझे लगता है मैं बेड से भी नीचे गिर जाऊंगा, और ये बात आधा घंटा चलती है फिर नॉर्मल होता है, ये क्या हो रहा है मुझे। उसने बोला हमसे सब लोग घबराते थे और मैं अपने कमरे में अकेला और डर रहा हूँ, कांप रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा, बात तो 40 साल पुरानी हो गई, मैंने कहा कि एक ही बात है बस, आपके नाम से ही लोग भयभीत थे ना, तो वो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर वापस आ जाता है ना। इसलिए सभी के कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए हम दूसरों को छह वाइब्रेशंस दें, पास्ट से भी स्वयं को हल्का करें, जो कुछ अब तक बीत गया अच्छा या बुरा, हमसे गलती हुई या दूसरों से, अपने को भी क्षमा कर देना होता है। कई बार मनुष्य अपने को क्षमा नहीं कर पाता, गिल्टी कॉन्शियसनेस बहुत रहती है, मैंने ये क्या किया, बाबा से भी क्षमा मांगने के बाद मन भारी रहता है। इसलिए क्षमा याचना के साथ ज्ञान का प्रयोग करना, ड्रामा के ज्ञान को यूज करना, इसकी भी बहुत जरूरत है। इसलिए पास्ट को भूलना ही है, नहीं तो पास्ट का दबाव वर्तमान को एंजॉय नहीं करने देता। हल्का करें अपने को, जो भी हो गया वो 5000 साल बाद ही होगा, उसके पन्ने बार बार क्यों खोलें? लेकिन कई इससे भी भारी होते हैं, फिर होगा, हम यही करेंगे फिर से, क्या इसको डिलीट नहीं किया जा सकता ड्रामा से, कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं। जब बहुत लोग जिद करते हैं कि नहीं हमें तो इसको खत्म करना है, तो मैं उन्हें एक विधि बताया करता हूँ। आप सोचेंगे आप ये विधि क्यों बताते हैं, एक बहुत अच्छा परिवार ज्ञान में आया चंडीगढ़ से, फैक्ट्री थी इनको, बुरे दिन आए, फैक्ट्री भी की, सब कुछ नष्ट हो गया, उसका हमारे जीवन के का 1.5 साल बहुत भयानक बीता। 1.5 साल के बाद बाबा मिल गया, 2.5 साल भयानक बीता, 2.5 साल के बाद बाबा मिल गया। कहा बहुत खुशी है, लेकिन जब मुरली में आता है ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है तो हमारी सारी खुशी चली जाती है। वो 2.5 साल फिर आएंगे, कहा उसको याद करके कांप उठते हम, इसे डिलीट करना है हमें, हमें रास्ता बताओ, योग बल से सब कुछ हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। मैंने उनसे पूछा ज्ञान में क्यों आए, इसलिए आए कि वो दुख बहुत हो गया था, भगवान मिल गया ना, मिल गया तो अगर वो बुरे दिन ना आते तो ये सुंदर दिन भी ना आते। अब देख लो, अगर उसको डिलीट करना है ये भी डिलीट हो जाएगा, आगे तक हो जाता है ना। कहा नहीं, ये तो चाहिए। फिर भी कई बार पूछा, नहीं कुछ हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, 8 घंटा रोज योग करो 8 साल तक, इट विल बी डन। अब वो तो उनसे होगा नहीं, लेकिन अगर बहुत अच्छा योग करने लगे तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा ना, पूरा भी अच्छा लगने लगेगा। तो सभी अपने चित्त को हल्का करके फरिश्ता बनेंगे, बनना है। यहाँ से बहुत फरिश्ते उड़कर पूरे यूके में जाने चाहिए रोज सवेरे, सोच लेना अच्छी तरह। ओम शांति। बताया मैंने उसकी माँ को कि 1 घंटा, उसकी दादी को कि 1 घंटा योग के अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, उस आत्मा के लिए योग करो तो धीरे धीरे शांत होगा। इतना शांत हुआ कि उसका रोना छूटा। ये होता ही है योग बल से, ये सब कुछ संभव होता है। ओम शांति।
और इच्छा